الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ کی کتاب مثالی مرد میں سے پڑھتے ہیں، اور جو عنوان اس وقت چل رہا ہے وہ ہے مثالی بیٹا. یعنی ایک بیٹے کو بہترین بیٹا، ایگزیمپلری بیٹا، ایسا بیٹا کہ وہ دوسروں کے لیے مثال بن جائے، بننے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو مردوں میں یہ ٹاپک چل رہا ہے، اور خواتین میں آج کل ٹاپک مثالی بہو کا چل رہا ہے. جن حضرات کی خواتین ان کلاسز کو لیتی ہیں تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، اور جن کی خواتین جو ہیں وہ نہیں لیتی ہیں تو کوشش کر کے دیکھیں، شاید آپ کے گھر والے بھی ان کلاسز کو لینا شروع کر دیں. تو اگر ان کو کوئی فائدہ ہوا تو ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا، آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو خیر کی طرف دعوت دیتا ہے نا، اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس خیر کے عمل کو کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. تو مشائخ کی باتیں ہیں، ان کو پڑھ کر کے ایکسپلین کر دیتے ہیں ان کلاسز کے اندر، تو امید تو یہ رکھتے ہیں کہ یہ اس میں خیر ہی ہوگی. بہرحال تو مثالی بیٹے کے ٹاپک میں ہم نے آخری چیز جو پڑھی تھی پچھلی کلاس میں وہ کیا تھی؟ ہاں، والدین کو دیکھنا بھی عبادت ہے. مَا مِن وَلَدٍ بَارٍ يَنظُرُ إِلَىٰ وَالِدَتِهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ إِلَّا كَانَ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حُجَّةً مَبْرُورَةً. ٹھیک ہے، کہ جو اپنے والدین کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے جو بیٹا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے میں مقبول حج کا ثواب لکھتے ہیں، رحمت کی نظر سے لکھتا ہے. تو اب اس کے بعد اگلا ٹاپک پڑھتے ہیں کہ باغ لگانے کی اتنی خوشی نہ ہوتی. تو اس میں ایک واقعہ حضرت نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باغ لگانا تھا، تو اس کے لیے وہ بہترین نسل کی کھجوریں لے کے آئے کہ میں کھجوریں زمین میں ڈالوں گا اور اس سے درخت بنیں گے تو ان کا مجھے پھل ملا کرے گا. یعنی بہترین نسل کی کھجوریں بیج حاصل کرنے کے لیے لے کر کے آئے تھے، لہٰذا اس کے لیے انہوں نے 1,000 درہم یا دینار خرچ کیے. جب وہ کھجوروں کی بوریاں گھر لے کر آ گئے تو والدہ نے کھجوریں دیکھیں تو ان کو چکھا تو ان کو وہ بہت اچھی لگیں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کو بتانا بھی گوارا نہ کیا کہ یہ میں نے باغ لگانے کے لیے بیج کے طور پر منگوائی ہیں، کھانے کے لیے نہیں منگوائیں. 1,000 درہم کی کھجوریں ان کی والدہ نے کھا لیں اور وہ خاموش رہے. کسی نے پوچھا کہ آپ نے باغ لگانا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے باغ لگانے کی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ میری والدہ کو کھجوریں پسند آئیں اور انہوں نے ان کو کھا لیا. ٹھیک ہے، تو یہ والدہ کے احترام اور محبت کا ایک واقعہ نقل کیا. تو بیسکلی اس کا، اس طرح کے واقعات اور بھی آگے آ رہے ہیں، تو ان کا مقصد کیا ہے کہ احترام اور ادب جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو. تو بالکل اگزیکٹلی اسی طرح کا عمل جو ہے وہ کروانا مقصود نہیں ہے کہ جی آپ بھی جو ہے وہ کھجوریں لے کر کے آئیں اور پھر جو ہے وہ والدہ کو کھجوریں کھلائیں، پتہ چلا والدہ کا پیٹ ہی خراب ہو گیا اور ان کی جو ہے نا وہ کچھ اور ہی گڑبڑ ہو گئی کہ جی کھجوروں نے کھانا شروع کر دیا اور آپ نے نہ ان کی شوگر کا خیال کیا نہ ان کے جو ہے وہ صحت کا خیال کیا اور وہ کھجوریں کھا کھا کر کے اللہ کو پیاری ہو گئی. ٹھیک، خیر اللہ کو پیارا ہو جانا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مطلب یہ کہ دنیا سے گزر گئی. تو اگزیکٹلی وہی کام کرنا جو ہے نا، کروانا یہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں جو ہے نا وہ مقصد سمجھنا مقصود ہوتا ہے، مقصد سمجھانا مقصود ہوتا ہے. ابھی قدرتاً یہ عاجز کسی کو سن رہا تھا، تھوڑا کسی نے فارورڈ کیا تھا مجھے کسی مقصد سے، تو اس وجہ سے وہ صاحب کی جو ہے وہ لیکچر یہ عاجز سن رہا تھا. तो उन्होंने बड़ा एक मजे का वाकया बताया कि उन्होंने ना अपने उस्ताद को अमेरिका बुलाया, ठीक है, वो कोई शेख थे, तो शेख साहब को जो है उन्होंने अमेरिका बुलाया, तो वो शेख साहब को तो अंग्रेजी भी नहीं आती थी, अरबी में बात करते थे, तो वो कहने लगे कि मैं जिस भी नॉन मुस्लिम से ना अपने शेख साहब को मिलवाता था ना, तो वो मुझे कहते थे कि इससे कहो, यानी अंग्रेजी में इससे कहो कि अगर एक कलमा ये मेरे पीछे दोहरा लेगा ना, तो इसके सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है, इसके सारे मसले हल हो जाएंगे। तो वो कलमा क्या था? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। तो ये जो है वो पर ट्रांसलेट करके बता दिया करते थे नॉन मुस्लिम अमेरिकन को, ठीक है, मुसलमानों से मुलाकात होती तो उस वक्त तो ये नहीं कहते थे, लेकिन गैर मुस्लिम से मुलाकात होती थी तो ये कहते थे, ठीक है। तो जिन्होंने ये वाकया सुनाया ना, तो वो सुनाने के बाद ये भी कहने लगे कि भाई मैं ये एडवाइज नहीं कर रहा कि हर बंदा यही काम करे, ठीक है। मकसद समझाने का ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं तो उन तक जो है वो दीन का पैगाम तो पहुंचा दो ना। अच्छा, इन्होंने बाद में अपने शेख साहब से पूछा कि आप जो है ये अमल क्यों करते थे, तो शेख साहब ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि मैं ये नहीं चाहता कि कयामत के दिन इनमें से कोई भी जो है ना वो अल्लाह ताला के सामने कहे कि देखो मेरी इससे मुलाकात हुई थी और इसने मेरे सामने इस्लाम पेश नहीं किया, इसने मेरे सामने इस्लाम पेश नहीं किया, मैं कयामत के दिन इस बात का जवाबदेह नहीं बनना चाहता, ठीक है। तो अब वो शेख साहब का अपना मकाम है, शेख साहब जो है वो उस यानी मर्तबे के हिसाब से हैं, तो इन्होंने भी जो है ना फिर बात समझाई और कहा कि भाई मैं दूसरों को तो एडवाइज़ नहीं करूंगा कि हर बंदा एग्जैक्टली यही वाला फेल करे, लेकिन अहमियत को समझाना मकसूद है, ठीक है, कि हमें अपने दीन को जो है ना वो इस तरीके से आगे पहुंचाना, यह हर मुसलमान की एक जिम्मेदारी भी बनती है, ठीक है ना। एक्सप्लिसिटली पहुंचाएं, इम्प्लिसिटली पहुंचाएं, अपने किरदार के जरिए से पहुंचाएं, किसी मौके के मुनासिबत से जो है वो पैगाम पहुंचाएं, लेकिन इस बात की फिक्र रहनी चाहिए, एक मुसलमान को इस बात की फिक्र रहनी चाहिए कि वो दावत और तबलीग का काम करता रहे, ठीक है ना। तो जिस्ट को समझना, मकसद को समझना, ठीक है ना, जिसको इल्लत को समझना भी कहते हैं, इल्लत को, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरह की एक यानी मकसद यहाँ पर यही है कि वालदा की इज्जत और एहतराम को समझाना, ठीक है। अगला वाकया फरमाते हैं अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु और वालदा का एहतराम। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि जब भी अपने घर से बाहर निकलने लगते थे तो हमेशा पहले अपनी वालदा के पास जाते थे, उनको सलाम करते, उनको बताते और फिर घर से जाते थे, और जब घर वापस आते थे तो पहले अपनी वालदा को सलाम करते और उनसे बात करते, अपनी वालदा का वो इतना एहतराम फरमाते थे, ठीक है। तो इसमें भी वही बात है कि प्रायोरिटी देना और इज्जत देना, एहतराम देना, मकाम देना, और इनकी वालदा भी उस वक्त इस यानी स्टेज में होंगी कि उनके पास जाकर के सलाम करो तो वो आगे से जवाब भी देने वाली कुछ है ना, तो यानी सारी चीजों को देख करके इस हिसाब से मकसद को पूरा करने के लिए कि हमें कोशिश करनी चाहिए, वो मकसद क्या है, वालिदैन का एहतराम और अदब। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वालिदा की तसल्ली के लिए मुजाहिदा। सैयदना इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालिदा का बहुत एहतराम करते थे। अल्लाह की शान के इमाम आजम जवानी की उम्र में ही बहुत बड़े फकीह बन गए थे और उनका फतवा चलता था, ठीक है, यानी लोग उनसे जो है वो पूछा करते थे कि भाई ये जो नया मसला पेश आया है तो इसमें शरीयत क्या कहती है, तो वो फिर इज्तिहाद करके मसला बताया करते थे, इसी को फतवा देना कहते हैं। फतवा देने का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज़ किताब में लिखी हुई थी आपने याद करके बता दी, या आपने किताब खोल करके जो है वो बता दी, इसको फतवा देना नहीं कहते। फतवा तो वो चीज़ होती है कि जिसमें इज्तिहाद करना पड़े, मुफ्ती का काम असल में इज्तिहाद करना होता है, वरना तो एक आम आदमी भी जो है वो किताब से खोल करके चीज बता सकता है, वो मसला बताना कहलाता है, वो फतवा देना नहीं कहलाता, ठीक है। तो इनका जो है वो फतवा चलता था, इतनी कम उम्र में इनको ये मकाम मिल गया था। 120 हिजरी से उनका फतवा चलना शुरू हुआ, वो अपने उस्ताद की मसनद पर बैठ गए और उनका बाकायदा फतवा चलता था। अब घर में भी कभी वालिदा को मसला पूछना होता तो वालदा अपने बेटे से भी पूछ सकती थी, मगर एक और बड़ी उम्र के फकीह आलिम थे और वालदा के दिल में उनकी अकीदत थी कि वो बड़े पुराने आलिम हैं, लिहाजा वो पक्का मसला बताएंगे, यानी वो बिल्कुल सही मसला बताएंगे। तो वालदा ना अपने बेटे से कहती कि नोमान मुझे उनके पास ले चलो, मैंने उनसे कुछ मसाइल पूछने हैं। तो इमाम आजम रहमतुल्लाह ने अपनी वालदा के लिए ऊँट मंगवाते, उनको ऊँट पे सवार करते और ऊँट की नकील खुद पकड़ते और उनको लेके चलते। रास्ते में इमाम आजम रहमतुल्लाह ने की कई शागिर्द मिलते, वो कहते कि हजरत हम ऊँट की नकील लेके चलते हैं। फरमाते नहीं, चूंकि मेरी वालदा सवार हैं लिहाजा इस ऊँट की नकील मैं ही पकड़ के चलूंगा। जब इस फकीर के पास उस फकीर के पास पहुंचते तो दरवाजा खटखटाते, वो बाहर आते और आप बताते कि मेरी वालदा आपसे मसला पूछने के लिए आई हैं। कई मरतबा मसला ऐसा होता था कि उनको भी समझ में नहीं आता था, तो फिर वो इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह को इशारा करते कि मुझे तो इसके जवाब का नहीं पता। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आहिस्ता आवाज में उनको मसला बता दिया करते थे और फिर वो ऊंची आवाज से इमाम साहब की वालदा को मसला बता देते थे। सारी उम्र ऐसा होता रहा, मगर इमाम साहब ने अपनी वालदा को यह ना बताया कि अम्मी जो मसला पूछने जा रही हैं वो आदमी तो मुझसे पूछ के मसले का जवाब देता है। सिर्फ इसलिए खामोश रहे कि अगर मेरी वालदा को तसल्ली उसी तरह होती है तो उनके दिल की खुशी का होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर भी वही मकसद के वालदैन के दिल को खुश करना किसी जायज तरीके से, जिसके अंदर के शरीयत की पामाली ना होती हो, जिसमें किसी किसी के साथ जुल्म ना होता हो। ठीक है, शरीयत की पामाली की अगर आप डेफिनेशन यानी एक क्या कहते हैं, एक जनरल टर्म के अंदर शरीयत की खिलाफ वर्जी को डिफाइन करना चाहें तो वो क्या होगा, वो क्या होगी कि किसी के साथ जुल्म ना होता, किसी के साथ जुल्म ना होता। ठीक है ना, सबसे पहले अल्लाह ताला के साथ जुल्म। अल्लाह ताला के साथ जुल्म क्या है कि अल्लाह ताला जो है उनकी अताअत की जाए, और अगर कोई अल्लाह ताला की अताअत नहीं करता, नाफरमानी करता है, तो ये अल्लाह ताला के साथ जुल्म। अब अल्लाह ताला को कोई तकलीफ बजाहिर तो नहीं पहुंचा सकते, ठीक है, लेकिन जुल्म का मतलब क्या कि अल्लाह को उसके मुकाम पे नहीं रखा। मुकाम अल्लाह का ये था कि उसकी बंदगी की जाए, उसकी अताअत की जाए, लेकिन उसको उस मुकाम से गिरा दिया, ये जुल्म हो गया। नबी अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म, नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई बात को मानना, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर अमल करना नहीं करता, ये नबी अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म हो गया। उसी तरह से तमाम इंसानियत के साथ, तो जुल्म जो है ना वो जायज़ नहीं है। माँ बाप के दिल को खुश करने के लिए किसी दूसरे के साथ जुल्म करना जायज़ नहीं है, लेकिन जब ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर क्यों ना करें भाई। ठीक है, अच्छा किसी ने लंबा सा एक मसला मतलब कोई कुछ मैसेज लिखा है कि मेरी नानी जान को पहले पक्का अंजीर मामू यानी उनका बेटा उनको दिए तो वो थोड़ी देर बाद मिस्कीन को दे दिए। अच्छा, उन्होंने पक्का अंजीर दिया तो उन्होंने मिस्कीन को दे दिया, फिर दूसरा बड़ा अंजीर ताज़ा तोड़ कर दिया दिए कि वो खाई तो नानी जान के गरीब रिश्तेदार को दिए। तीसरे दिन मेरी वालदा ने कहा माँ भाईजान आपको दिए और आप दूसरों को देती हैं, फिर भी आपकी खुशी में वो चुप हैं। तब वो उनके सामने खाकर बेटे को खुश किए, लेकिन मैं को माँ को कुछ ना कहा ताकि वो खुश रहे। बहुत अच्छा उन्होंने फेल किया, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जगह इसके ऊपर अता फरमाए। ठीक है, तो कोई सवाल वैसे अगर होता तो ठीक है, आपने चलें एक वाक्य बयान कर दिया अपने घर का। उम्र भर वालिदा के सामने आवाज बुलंद न की। मोहम्मद इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने ताबीर रोया किताब लिखी है, उनके बारे में उनकी बहन हफ्सा बिनते सीरीन कहती हैं कि अपनी वालदा से गुफ्तगू करते हुए वो इतना आहिस्ता बोलते थे कि हम हैरान होते थे। जिंदगी भर उन्होंने अपनी आवाज अपनी वालदा की आवाज से बुलंद नहीं की। इतना उनका एहतराम करते थे कि उनकी वालदा को कुछ खास डिजाइन वाले कपड़े बड़े पसंद थे। जब इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि मेरी वालदा ऐसे रंग वाले कपड़े पहनना पसंद करती हैं, तो वो रंगरेज के पास रंग सीखने के लिए गए और उसके बाद अपनी वालदा के कपड़े वो खुद रंगा करते थे ताकि मेरी वालदा उस रंग के कपड़ों को पहने और उनको खुशी मिले। ठीक है, तो कोई चीज़ नहीं आती थी तो वो चीज़ भी जो है सीखने की कोशिश करी और वालदा के लिए खुद वाला अमल करते थे। इसमें जो है वो आवाज़ बुलंद करने वाली बात भी याद रखें, तो तब जाहिर सी बात है इसके अंदर कि अगर वालदा की हियरिंग का कोई प्रॉब्लम होता तो फिर उनके सामने आवाज़ पस रखने का मतलब ये था कि वालदा को आवाज़ ही नहीं आए, उनको पता ही नहीं चले जो है वो ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर हेयरिंग का प्रॉब्लम है तो फिर तो आवाज़ को ऊंचा करके ही उनको बात समझानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली ऐसा मसला नहीं था। माँ की दुआ ने शकरगंज बना दिया। तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशायख में से गुजरे हैं, बहुत शीनी जुबान थे, बात ऐसे अंदाज से करते थे कि दूसरे बंदे का दिल मोह लेते थे। एक मरतबा उन्होंने बड़ी मोहब्बत से अपनी वालदा से बात की तो माँ ने कहा कि बेटा तू बफजले खुदा शकर की तरह शीरी ही रहेगा। उनकी माँ की दुआ इस तरह कबूल हुई कि आज भी उनको मरने के बाद बाबा फरीद शकरगंज कहते हैं। अल्लाह ने शकर को नाम का हिस्सा बना दिया। ठीक है, तो ऐसे ही होगा जैसे हजरत ने बयान किया, लेकिन बचपन में पता नहीं कोई करामात औलिया वगैरह की किताब से मुझे याद पड़ता है कि वो कुछ और चीज़ पढ़ी थी कि उन्होंने पता नहीं शकर की डली बन जाती थी, वो लोगों को शकर की डली दिया करते थे, तो उस वजह से उनका नाम शकरगंज हो गया। बहरहाल हजरत फरमा रहे हैं तो हजरत का मतलब, तो जाहिर है हमारे मतलब से ज़्यादा ऑथेंटिक है। कुफर की नज़र में वालदेन की खिदमत। कुफर के माहौल में एक नई साइंटिफिक रिसर्च साइंसी तहकीक है कि आप अपने वालदेन की खिदमत कैसे कर सकते हैं। दीन इस्लाम ने तो बता दिया कि आप उनको अपने साथ रखें, उनकी बातों को सुनें और उन पर अमल करें, उनको खुश रखें, उनकी खिदमत करें, जितना उनको आप खुश रखेंगे आप गोया अपने परवरदिगार को खुश रखेंगे। ठीक है, तो अपने साथ रखें का मतलब क्या होता है कि उनको किसी ओल्ड पीपल्स होम के अंदर ना डाल दें। ठीक है, उनको जो है वो कहीं दूर दराज जो है वो सेटल कर दिया और खुद जो है वो दूर दराज कहीं रह रहे हैं, ऐसा ना करें, बल्कि उनको अपने करीब रखें, घर के अंदर उनका उनका पोषण हो। ठीक है, जिसमें कि वो इंडिपेंडेंटली रहें और आप जो है वो वहीं पर रहें, बराबर बराबर का घर वाला सिलसिला भी कर सकते हैं, उनके लिए खादमा रख लेना वगैरह, तो ये सारी चीज़ें फिर साथ रखने के तफसीलात हैं। ठीक है, बाकी है कि वो मियाँ बीवी सास बहू वाला जो मसला है ना, वो फिर उसको भी भूल ना जाया करें। एक मतलब एक टॉपिक के ऊपर इतना माशाल्लाह जब हम वाकयात पढ़ते हैं ना, हम दूसरी साइड को बिल्कुल ही भूल जाते हैं और फिर जो है वो कुछ का कुछ बन जाता है। ठीक है, ये मकसद नहीं होता इन वाकयात को बयान करने का और इन नसीहतों को बताने का कि या तो इस एक्सट्रीम पे चले जाएं या दूसरी तरफ स्विंग करें ना, तो फिर दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाएं, जहां बीवी के हुकूक पड़ रहे हैं तो एकदम से जो है ना बीवी ही बीवी और माँ जो है वो किसी काबिल नहीं रही, और माँ के हुकूक बढ़ रहे हैं तो माँ ही माँ और बीवी किसी काबिल नहीं रही। ये बेवकूफ़ी की हरकतें होती हैं, ये बेवकूफ़ियाँ करेंगे तो फिर पछताएंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो तफसील होती है चीज़ों के अंदर, तो अच्छा ये है कि अगर खुद अकल नहीं है समझ नहीं है तो फिर समझ वालों से पूछ लेना चाहिए कि हमें कैसे मुआवजा करें, सबको यानी सबको अपने अपने मुकाम के ऊपर रखने के लिए। वालदा का अपना मकाम है, बीवी का अपना मकाम है, बाप का अपना मकाम है, ये नहीं कि बाप जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि 3 गुना माँ का हक है तो बाप को जो है ना वो यानी खड्डे से लगा दिया। ठीक है ना, और माई माँ यानी फिर वो सुबह वाली बात जो हो रही थी ख्वातीन की क्लास के अंदर कि आजकल तो चंदा मामू चंदा चाचू कोई नहीं होता, चंदा मामू होता है क्योंकि माँ की चलती है, बाप की कोई नहीं सुनता। ठीक है, तो ये दो यानी ये एक्सट्रीमिटीज की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है, तो फरमाया कि अपने साथ रखें, उनकी बातों को सुनें, उन पर अमल करें, उनको खुश रखें, उनकी खिदमत करें, जितना उनको आप खुश रखेंगे आप गोया अपने परवरदिगार को खुश रखेंगे। लेकिन कुफ्र के माहौल में चूंकि मामला थोड़ा मुख्तलिफ है, लिहाजा उन्होंने रिसर्च की कि बाप की खिदमत एक बेटा कैसे कर सकता है। अब उनके पास तो वही नहीं है, वही तो है लेकिन उन्होंने उसको ठुकराया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से खुद ही जो है वो अपनी अकल की बुनियाद पर और अपने तजुर्बे मुशाहदे की बुनियाद पर रिसर्चेस करते रहते हैं हर वक्त। तो फरमाया कि जी पहली बात वो कहते हैं कि बाप की खिदमत इस तरह की जा सकती है कि अपने माँ बाप के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मुलाकात की तारीख ली जाए। ठीक है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट जो है वो आप अपने बाप के लिए ले लिया करें। अच्छा, हजरत फरमाते हैं कि आप इन नुकात को सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी कि ये माँ बाप की मदद करने का तरीका है कि माँ बाप चूंकि बूढ़े हैं उनके लिए फोन करना बातों को याद रखना और दूसरे से बात करना मुश्किल है, लिहाजा आप उनकी ऐसे मदद करें कि उनके लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट आप ले लिया करें। ठीक है, तो यानी आपको हंसी आएगी, आपको हंसी आएगी कि इससे क्या मुराद, यानी हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें हंसी आएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुसलमान और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं कि जिनको हंसी वसी कोई नहीं आएगी अगर वो ये पढ़ेंगे। पहली बात तो जाहिर है उन्होंने हजरत की कोई किताब पढ़नी नहीं है, ऐसे लोगों ने, उन्होंने तो फिल्में देखनी है और उन्होंने तो अपनी जिंदगी अपनी मनमर्जी के मुताबिक गुजारनी है, तो उनको उन्होंने तो पढ़ना ही नहीं है पहली बात, ठीक है ना। लेकिन अगर पढ़ भी लेंगे ना तो उनको कोई हंसी नहीं आएगी, क्यों? इसलिए कि वो खुद ये कर चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल उनकी जिंदगी जो है ना वो काफिरों वाली जिंदगी बन चुकी है। कल ही इस हाजिस को घर वालों ने जो है ना वो किसी दूर पर रिश्तेदार के बारे में बताया कि उनके जो है ना वो उन्होंने अपनी वालदा को ओल्ड पीपल्स होम के अंदर, ठीक है, और बस बेटे मौजूद हैं, ठीक है ना, एक से ज्यादा बेटे मौजूद हैं, लेकिन वालदा जो है वो ओल्ड होम के अंदर, ठीक है। और ये ओल्ड होम जो है वो अमेरिका के अंदर खाली नहीं होते, ये तो वाकई अमेरिका का है, ठीक है, लेकिन ये तो पाकिस्तान के अंदर, या जिस पुराने लोगों को तो याद अगर होगा, मैं तो 2015 के अंदर जो कुछ वक्त गुजारा था पाकिस्तान में, जरा लंबा टाइम गुजारा था कराची के अंदर, तो उस वक्त जो है ना एकदम पॉप अप होने शुरू हो गए थे। पॉप अप होने यानी बाकायदा बिल बोर्ड्स कराची की सड़कों के ऊपर, और डिफेंस क्लिफ्टन जो अमीर कबीर इलाके होते हैं ना, नहीं वहां पर नहीं, मिडिल क्लास के जो इलाके, नाजमाबाद का इलाका जो कराची वाले हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, मिडिल क्लास एरिया कहलाता है वो, जब थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास होगा लोअर मिडिल क्लास भी होगा, वहां पर ओल्ड पीपल्स होम्स, और वो पहला शायद पाकिस्तान का शायद पहला था जिसका कि मैंने बिलबोर्ड देखा, हैरान रह गया, तस्वीर खींच करके साथियों के साथ शेयर भी करी थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद तो खुलने शुरू हो गए, मशरूम्स की तरह से पॉप अप होने शुरू हो गए, क्यों भाई? औलाद जो है या तो बाहर के मुल्कों में चली गई, ठीक है ना, अब वालदैन के साथ कहाँ से रहे, वालदैन को हर वक्त नहीं बुला सकते बाहर, वीजा कहाँ से आएगा, और जो है वो वापस तो बहरहाल जाना पड़ेगा, या ये कि बस इतने लड़ाई झगड़े, इतने मार कुटाई, इतना जो है वो दंगा मुश्ती के बेहतर है कि अलग ही रहो भाई, और अलग कहाँ पे रहो, दूसरा कोई है नहीं संभालने वाला, चलो जी उस क्या कहेंगे उसको, बूढ़े खाने के अंदर जाकर के, ठीक है। बाकायदा फिर उसके बाद सुना कि टीवी के ऊपर भी कवरेज आ रही है कि जी फलाने का बेटा जो है वो उसने अपनी माँ को इधर दाखिल करवा दिया और ये हो गया और वो हो गया, यानी ये 2015 की बात बता रहा हूँ, अब तो 2024 शुरू हो चुका है ना, 9 साल गुजर चुके हैं, अब पता नहीं क्या हाल होगा। तो कुफर का माहौल, कुफर के दुम में लगोगे तो फिर तुम्हारे घर के अंदर भी कुफर का माहौल ही आएगा, तुम्हारे मुल्क के अंदर भी कुफर का ही माहौल आएगा ना। फिर उसके बाद अगला पॉइंट कि फिर बूढ़ी उम्र में चूंकि इंसान की याददाश्त काफी खत्म हो जाती है, तो उसके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली चीजें जैसे मछली और इस किस्म की गजाएं उनको खिलानी चाहिए ताकि उनकी याददाश्त के खत्म होने के अमल को कम किया जा सके, ठीक है। ये भी एक एहसान हुआ वालदैन के ऊपर। दूसरा एहसान कि फिर अपने माँ बाप को टेक्नोलॉजी से अपडेट आगाह रखें, यानी बूढ़े बंदे को आईफोन लेकर के दें और उनको चलाना सिखाएं और उनको कहें कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, ठीक है। तो ये उनका एक और सजेशन माँ बाप की खिदमत करने का, ठीक है। तो ये इबरतनाक वाकयात है। आज सुबह की क्लास के अंदर खवातीन में से एक खातून ने बताया कि माँ बाप भी तो फिर उस ये उनके भी तो यानी कारिस्तानी होती है ना, जो कि औलाद फिर ऐसी बन के निकलती है, ठीक है ना। उन्होंने औलाद को अल्लाह का बंदा बनाया होता, नबी अलैहिस्सलाम वसल्लम का उम्मती बनाया होता, तो फिर औलाद उनके साथ भी अच्छा मामला करती है ना, उन्होंने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना, वालदैन ने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अब सुबह की क्लास के अंदर एक खातून ने बताया कि वालदैन ने बेटे साहब को तो लड़ाई वड़ाई होकर के बाहर निकाल दिया, दामाद और बेटी को जो है वो अंदर रख लिया घर के, और अब ये हाल है कि दामाद मारता है सास, मारता है, सुसर को मार नहीं सकता तो गालियां देता है अपने सुसर को, ठीक है। ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर ऐसे घराने मौजूद हैं, काफिरों के नहीं है, मुसलमानों के घराने, ठीक है। तो अल्लाह की नाफरमानी है ना, इसके लिए फिर नकद पकड़ आ जाती है, इसको कहते हैं नकद पकड़ना, ठीक है। बहरहाल ये सब कुछ भी हो रहा है ना। फिर एक और बात कि वर्क विद देयर फार्मासिस्ट, के जो उनका दवाइयां देने वाला बंदा है तो उसके साथ ताल्लुक रखें। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि वो चाहे किसी भी मर्ज के लिए किसी भी डॉक्टर को दिखाएंगे, लेकिन दवाई तो उन्होंने एक ही फार्मेसी की दुकान से लेनी है, ठीक है। तो वो फार्मेसी में ना बकायदा अकाउंट होता है फिर अमेरिका वगैरह के अंदर ना, तो वो उसी फार्मेसी से उनकी ये सारी की सारी प्रिस्क्रिप्शन चलती हैं। तो एक ही फार्मेसी की दुकान से उन्होंने दवा लेनी है, और फार्मेसिस्ट को पता होता है कि किस बंदे को किस किस बीमारी के लिए कौन कौन सी दवाएं दी जा रही हैं। बकायदा इंश्योरेंस का अकाउंट होता है फार्मेसी के अंदर, तो उसको सब पता होता है अपने, यानी पता क्या मतलब, याद की थोड़ी होता, कंप्यूटर के अंदर देख करके उसको पूरी की पूरी प्रोफाइल आ जाती है एक मरीज की। तो उनके साथ अगर रब्ता रखेंगे तो माँ बाप की बीमारियों का और उनकी सेहत का अच्छा पता चलता रहेगा, ठीक है। माँ बाप की सेहत का पता करने के लिए जो मोहल्ले की फार्मेसी है ना, वहां पे जरा अपना आना जाना बढ़ाएं, ठीक है भाई। क्या जबरदस्त, माशाल्लाह। फिर एक रिसर्च ये है कि उनके लिए ड्राइवर का बंदोबस्त करें, ठीक है, ताकि वो खुद ही आना जाना अपना ड्राइवर कर सकें, आपको बॉदर ना कर सकें वो। एक रिसर्च ये भी है कि माँ बाप से मोहब्बत का इजहार भी करें, ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कि नौजवान बच्चे कई मरतबा सोचते हैं कि हम तो माँ बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर मोहब्बत इजहार चाहती है, नौजवान इजहार नहीं कर पाते, यहीं पर गलती करते हैं, ठीक है। तो मोहब्बत है माँ बाप से, तो भाई मोहब्बत का इजहार भी करें ना। तो ये यानी ये फिर वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, और जो है वो यानी खुश मौलवी भी जिसको कहा जाता है। तो मोहब्बत तो है लेकिन इजहार नहीं, ये वालदैन के साथ भी होता है, ये बेगम के साथ भी फिर ये चीज़ बहुत ज्यादा हो जाती है कि जी बेगम साहिबा भी मोहब्बत का इजहार चाहती हैं, उनके साथ मोहब्बत का इजहार करते नहीं है, तो फिर मामला खराब हो जाते हैं। तो हजरत फिर अपना एक वाकया बयान करते हैं कि मोहब्बत इजहार चाहती है। एक मरतबा मैं किताब का मुताला कर रहा था कि मोहम्मद सरमद की उम्र उस वक्त 2 साल की थी, जो पोते साहब में तो माशाल्लाह शायद 14 साल तो उनकी उम्र हो गई होगी या 13 साल, तो 2 साल की उम्र थी। वो मेरे कमरे में आया, सलाम किया, तो मैंने जवाब देकर दोबारा किताब पढ़नी शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद वो वापस चला गया। मैंने सोचा कि बच्चा है, बाहर जाके खेल रहा होगा, मगर कुछ देर बाद वो अपनी माँ के साथ रोता हुआ आया। मैंने पूछा कि ये रो क्यों रहा है, तो उसकी वालदा ने कहा कि ये मेरे पास आया है और कह रहा है कि अब दादा अब्बू मुझसे प्यार नहीं करते, मैं उसको लेके आई हूँ कि तुम ये बात क्यों कह रहे हो। तो मैंने उसे पूछा कि मोहम्मद सरमद आप ये बात क्यों कह रहे हैं, तो उसने मुझे आगे से जवाब दिया कि दादा अब्बू मैं आपके पास रोजाना आता हूँ, तो आप मुझे गले लगाते हैं, प्यार करते हैं, तो मुझे पता चलता है कि आप मुझे प्यार करते हैं। आज मैं आया हूँ तो आप किताब पढ़ रहे थे, मैंने जब सलाम किया तो आप मुझे जवाब दे के फिर किताब ही पढ़ते रहे, तो आज मुझे महसूस हुआ कि अब आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। अगर एक छोटा बच्चा भी इस चीज को महसूस करता है कि दूसरा बंदा मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं कर रहा, तो माँ बाप को तो बुढ़ापे में इसकी ज्यादा जरूरत होती है, लिहाजा माँ बाप के सामने मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, जुबान से कहना भी चाहिए कि हमें आपसे मोहब्बत है, हम आपकी इज्जत करते हैं। नीज उनको कभी कभी उनकी तबीयतों के मुवाफिक कुछ तोहफे भी लेके देने चाहिए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तहादो तहाबू, एक दूसरे को हदिया दिया करो, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। वालिदैन को खुश रखना एक अजीम अमल है। अच्छा, किसी ने यहाँ पे सवाल लिखा है डायरेक्ट मैसेज में जो बाकी लोग नहीं देख सकते हैं, तो मैं पढ़ लेता हूँ कि बड़ी उम्र में आकर क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान की जो तबी आदत बुढ़ापे की वजह से होती हैं, बात ना मानना, जिद्दी होना, चिड़चिड़ाहट, वो ना हो, यानी बूढ़ा जो बच्चा बन जाता है वो ना बने। अगर हाँ तो हम ऐसे कैसे हो सकते हैं, बुढ़ापे में क्या ऐसा मुमकिन है कि जो आम तौर पर बुढ़ापे में मामला हो जाता है कि जैसे वो कोई बात नहीं मान रहे होते, जिद्दी हो जाते हैं, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, तो क्या कोई चीज हम कर सकते हैं कि जिससे कि हमारे अंदर ये वाली कैफियत ना आए जब हम बूढ़े हो जाएं, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो थोड़ी सी तफसील है। एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने एक उसूल बनाया है, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, ठीक है, कि जिसको भी हम लंबी उम्र देते हैं ना, नुअम्मिरहु यानी उसकी उम्र को हम दराज कर देते हैं, उम्र देते हैं का मतलब यहाँ पे उम्र दराज हो जाना, ठीक है। तो हम उसको ना खल्क के अंदर यानी उसके जो स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर उसको यानी नाकस कर देते हैं, उसको हम खराब कर देते हैं, या उसको जो है वो क्या कहते हैं, नाकस इनको सूत्र एग्जैक्टली क्या तर्जुमा होने का, यानी ड्रेन कर देते हैं ना शायद, एक्चुअली सही इसका, बहरहाल मकसद तो आप समझ गए होंगे। तो अब इसमें जो है ना वो दो चीजें हैं, एक चीज तो है फिजिकल, ठीक है, जिस्मानी तौर पर जो है ना वो यानी लागर हो जाते हैं, जिस्मानी तौर पर उनकी नजरें खराब हो जाती हैं, समाअत खराब हो जाती है, वॉक जो है वो सही तरह से नहीं कर सकते, और बहुत सारे इस तरह की जिस्मानी अवारिस उसके अंदर हो जाते हैं। तो ये जिस्मानी अवारिस वाला मामला जो है ना, ये तो यानी इसको रोकना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम होता है। बहुत ऐसे लोग जिन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की सेहतमंद जिंदगी गुजारी होती है ना, बड़े जबरदस्त उसूलों का ख्याल रखा होता है, तो उनके तो वाकयात हैं, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि 90 साल की उम्र के अंदर भी बिल्कुल फिट फाट, ठीक है, हत्ता के अभी रिसेंटली मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब नुपुशे अफ़गान में आज पढ़ा था, तो कुछ अरसा पहले ही यानी उन्होंने गालिबन खुद भी देखा था उन बुजुर्ग, इतना नहीं 120 या 140 साल की उम्र थी और बिल्कुल ठीक ठाक थे। अदाजी भी अपना एक वाक्य बताते हैं इस तरह के बुजुर्ग का, तो ये तो बिल्कुल एक्सेप्शन होती हैं, लेकिन उसके अलावा ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज है कि नफसियाती तौर पर और रूहानी तौर पर यानी इंसान जो है ना वो बहुत ही चिड़चिड़ा और जिद्दी और ये हो जाए, तो इसके अंदर जो है वो हमने मशाइख से सुना और हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने नहीं गालबन इसको लिखा भी है, यानी उनके मलफूजात के अंदर मौजूद है कि जिसका ताल्लुक जो है ना वो कुरान से होता है ना, ठीक है, तो वो फिर बुढ़ापे के अंदर जो है ना वो उसके साथ ये वाली कैफियत नहीं होती, जो तबीयी ये जो यानी रूहानी कैफियत जो खराब हो जाती है ना, नफसियाती कैफियत भी खराब, वो कुरान से जिसका ताल्लुक ज्यादा होता है उसके साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो चले उसके साथ भी होता ही है, जैसे हजरत फरमाते हैं कि बूढ़ा शख्स जो है ना वो तो हवा को भी गालियां दे रहा होता है, यानी उसको हर चीज के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, तो ये अक्सर के लिए लिल अक्सर हुक्मुल कुल, ठीक है, लेकिन जिनका ऐसा खास ताल्लुक होता है तो फिर उनकी ये वाली कैफियत जो है ना वो या तो बहुत कम हो जाती है या नहीं होती। हमारे हजरत के जो शेख थे मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह, 93 ईयर्स की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है, और अपने इंतकाल से 1 साल पहले तो वो पूरी दुनिया का सफर करते थे, ठीक है ना, वो खैर जिस्मानी तौर पर बड़े फिटफाट थे, लेकिन सफर खाली ये को थोड़ी कि भाई यानी कोई बेटे के घर में जाने के लिए सफर कर रहे हैं जैसे कि बूढ़ों को करना पड़ता है, नहीं, वो तो तबलीग के लिए सफर करते थे ना, बयानात के लिए और लोगों से मुलाकात के लिए और लोगों को अच्छे मशवरे देने के लिए सफर करते थे, यानी जहनी तौर पर भी वो बिल्कुल जबरदस्त फिट थे, बिल्कुल जहनी तौर पर भी, ठीक है। फिर उसके बाद आखिरी का 1 साल जो था उसके अंदर उनको बीमारियां बढ़ गई उनकी, और जॉन्डिस वगैरह भी हो गया, और शुगर वगैरह तो उनको थी पहले से, तो वो चीजें इतनी खराब होंगी कि फिर उनका सफर बिलाखिर बंद किया गया, ठीक है। तो ये है कि अब अपने बुढ़ापे से बचने के लिए जो है ना उस किस्म की चीजों से बचने के लिए, एक तो अल्लाह ताला से दुआ भी मांगनी, हमने नबी अलैहिस्सलाम से सीखा ना, नबी अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिन अरज़लिल उम्र, वो जो दुआ है मिनल जुबनी वल मिनल बुखली वल जुबनी, ठीक है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिनल अज़्ज़े वल कस्ले, तो उसके आखिर में क्या है, मिन अरज़लिल उम्र, यानी जब उम्र जो है ना वो बहुत खराब हो जाती है तो उससे भी मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ, ठीक है। तो दुआ के बाद फिर रूहानी तौर पर अपने आप को अल्लाह ताला से जोड़ करके रखें, कुरान मजीद से जोड़ करके रखें, दीन की बातों से, तो फिर ऐसा जो बुढ़ापा होता है वो फिर यानी बहुत ही गोल्डन बुढ़ापा होता है, ठीक है। फिर ऐसे बुढ़ापों से कि जो है ना फिर अल्लाह ताला फिर दिलों में मोहब्बतें भी डाल देते हैं लोगों की, लोग जो है वो मुलाकात करना चाहते हैं, लोग उनसे सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास जो है एक तो बे इंतहा तजुर्बा होता है, उनका इल्म जो है वो वसी होता है, ठीक है, क्योंकि इल्म वसी होने के लिए ना टाइम चाहिए होता है, ठीक है ना, यानी जो यानी बाकायदा जो 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 नॉलेज है, फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड व्हाट्स एंड वेयर एंड वाइज, ठीक है, इनके लिए ना यू नीड टाइम, तो जितना टाइम इंसान को मिलता है उतना ज्यादा उसका इन जो है वसी होता है, तो बूढ़ा शख्स जो है वो उसमें तो अच्छा खासा वक्त गुजारा होता है दुनिया के अंदर, तो ऐसा बुढ़ापा फिर बड़ा हसीन होता है, और उनके पास फिर लोगों को टाइम देने के लिए टाइम होता भी है, क्योंकि उनका कोई फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना बच्चों की है, ना जो है वो जॉब की है, ना जो है वो कोई और इस किस्म की, अब जो है वो नई नस्ल इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल रही है, तो उनके पास वक्त भी होता है, ठीक है, लोगों को बांटने के लिए। तो भाई हर एक को कम से कम तमन्ना तो करनी चाहिए ना, और दुआ मांगनी चाहिए कि हम भी ऐसे बन जाएं। अगर अल्लाह ताला ने हमें लंबी उम्र दी, जिसका कि किसी को कुछ पता नहीं है, अगर दी तो हमारा बुढ़ापा भी जो है वो अच्छा हो सके। अच्छा, फिर उसके बाद फरमाते हैं कि वालदैन को खुश रखना एक अजीम अमल है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैत के लिए हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैं हिजरत पर आपसे बैत करने के लिए आया हूँ, और मैंने बड़ी कुर्बानी दी है कि मैं अपने वालदैन को रोता हुआ छोड़कर आया हूँ। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वापस जाओ और जैसे उन्हें रुलाया है इसी तरह उन्हें हंसाओ। यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात समझाई कि माँ बाप के दिल को खुश करना बहुत अजमत वाला काम है। तो इस हदीस की यानी क्या कहते हैं तखरीज वगैरह तो बहरे साजिद ने नहीं करी है, लेकिन जहाँ तक आम मशहूर हदीस जो है ना, यानी फेमस हदीस, वो मशहूर वाली, वो खास मुतवातर और मशहूर की कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो फेमस है वो जिहाद के ऊपर बैत करने के लिए। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, या हो सकता है एक हदीस हिजरत के लिए भी हो, इसी कॉन्टेक्स्ट में, वालदैन को रोता छोड़ करके आने वाले कॉन्टेक्स्ट में, तो नबी अलैहि सलाम ने उनको वापस कर दिया। ठीक है, तो इसमें फिर फुकहा फिर जो मजीद मसला निकालते हैं, तो वो ये फरमाते हैं कि यानी जिहाद जब फर्ज हो जाए ना, तो फिर तो किसी चीज की वजह से उसको नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन नफली जिहाद भी तो होता है ना, कि भाई दूसरे लोग भी मौजूद हैं जिहाद करने के लिए, अब नफरी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा बस एक बंदा आ गया, लेकिन वालदैन पीछे बूढ़े थे, उनको जरूरत थी, तो ऐसे में जो है ना, वो वालदैन को खुश रखना, वालदैन की खिदमत करना, ये जिहाद से अफजल होगा, नफली जिहाद से अफजल होगा। वालदैन का एहतराम किया जाए गो वो काफिर हो। अच्छा, पीछे शायद पिछली क्लास के अंदर बात हुई थी ना नमाज तोड़ने के ऊपर, कि अगर माँ बाप ने बुलाया हो, तो आप में से एक हमारे अनसार भाई हैं, उन्होंने फिर उसका मसला भेज भी दिया था इस वकील को, तो उसमें से पढ़ करके ये आपको बता देते हैं कि वालदैन के पुकारने पर नमाज तोड़ने का हुक्म हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि शरीयत का हुक्म है कि अगर कोई शख्स नवाफिल में मशगूल हो और वालदैन बेखबरी में पुकारें, तो नियत तोड़कर उनकी बात सुन ले। ठीक है, यहां तक कि अगर बजरूरत पुकारें तो फर्ज भी तोड़ दे। ठीक है, यानी वालदैन को नहीं पता कि ये नमाज पढ़ रहा है, तो नफिल नमाज तो तोड़ ही दे अगर वालदैन ने पुकारा है। और बेखबरी का मतलब कि चूंकि उनको पता नहीं था इस वजह से उन्होंने पुकार लिया। ठीक है, लेकिन अगर वाकई उनको जरूरत थी, भाई वो गिर गए, या उनको जो है वो कोई और तकलीफ हो रही है, या कोई और ऐसा मसला है, जरूरत पेश आ रही है, तो ऐसे में नफली नमाज तो बगैर जरूरत के भी तोड़ दें, लेकिन जरूरत हो तो फर्ज भी तोड़ दें। ठीक है, अशरफुल अहकाम सफा 112, मलफूज नंबर भी 4583। अच्छा, तो यहाँ पर जो है वो जिहाद या हिजरत का जिक्र था इस वाली जो भी हमने पढ़ी हदीस में। वालदान का एहतराम किया जाए गो वो काफिर हूँ। अस्मा रजी अन्हा सैदना सिद्दीक अकबर रजी अन की बड़ी बेटी थी, और हजरत आयशा रजी अन्हा की बड़ी बहन थी। उनकी वालदा ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो मुशरिका ही थी। चुनाचे एक मरतबा उनकी वालदा उनको मिलने के लिए आई, तो अस्मा रजी अन्हा ने हजरत ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा मेरे पास मेहमान आ रही हैं और वो मुशरिका हैं, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? ठीक है, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु की पहली बीवी थी, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु की जो वालदा थी ना, वो दूसरी बीवी थी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगरचे वो मुशरिका हैं, इस्लाम अभी कबूल नहीं किया, मगर तुम उनकी खिदमत करो, इसलिए कि वो तुम्हारी माँ है। ठीक है, उसी तरह बाप का भी वाक़या, अबू सुफियान बिन हर्ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाद में मुसलमान हो गए थे, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए थे ना, तो वही हुआ था कि जी उनके साथ जो है वो, उन्होंने भी पूछा था नबी अलैहिस्सलाम से, जवाब ही दिया था, अभी तुम उनके साथ अच्छा सलूक करो। तो दीन इस्लाम की खूबसूरती देखें कि माँ बाप अगर काफिर भी हो, तब भी शरीयत उनका एहतराम सिखाती है। ठीक है, तो काफिर की डेफिनेशन क्या होती है? जो अल्लाह की नहीं मानता। काफिर की क्या डेफिनेशन होती है? जो कि अल्लाह की नहीं मानता, बाकायदा इनकार कर देता है अल्लाह के हुक्म का, वो काफिर हो जाता है। ठीक है ना, मानते तो खैर हम भी, कोई खास नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि नहीं मानेंगे। ठीक है ना, हम कहते हैं जी मानेंगे और जी हाँ नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं, लेकिन कमजोर हैं और सुस्त हैं और यानी नफ्स गालिब आ जाता है तो इस वजह से अमल नहीं कर पाते वगैरह। काफिर तो वो होता है जो कि अल्लाह की मानने से इनकार कर देता है, लेकिन अल्लाह ताला का हिल्म कितना है, अल्लाह ताला जो है वो कितने रहीम है कि अपने मानने वाले बंदों से कहते हैं कि मेरे ना मानने वाले की भी तुम खिदमत करो। ठीक है, फरमाया गया कि वसाहिब हो माफी दुनिया मारूफा, और दुनिया में उनके साथ भलाई से रहो, यानी तुम दुनिया के अंदर उन मुशरिक माँ बाप के साथ भी मुनासिब जिंदगी गुजारो, अच्छी जिंदगी गुजारो और उनका एहतराम दिल में रखो। एक वाकया हजरत जी ने ही बा अदब बा नसीब के अंदर वालिदैन के हुकूक के तहत लिखा है कि एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन कुछ था ना कि किसी को जो है ना वो बताया गया कि फलाना शख्स जो है ना वो जन्नती है, तो उसने तहकीक करने की कोशिश करी कि भाई ये कैसे जन्नती है भला मुझे भी पता चले, तो वो उस बंदे का पीछा करते करते उनके घर पहुंचा और जो है ना वो यानी उनसे पूछा कि भाई आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि जिसकी वजह से कि आपके लिए जन्नत की बशारत दी गई है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा नहीं मेरा तो कोई ऐसा अमल नहीं है, अलबत्ता जरा कमरे में अंदर आकर के तुम देख लो। तो जब ये अंदर ले आकर के दिखाया तो क्या देखता है कि दो सूअर बंधे हुए हैं कमरे के अंदर, दो सूअर PIG पिग्स बंधे हुए हैं। ठीक है, और ये जो है ना वो उनको फिर खाना खिला रहा है और उनके जो है वो सफाई सुथराई वगैरह कर रहा है। तो ये बंदा हैरान हुआ कि ये आप क्या कर रहे हैं, सुअर क्यों बांधे हुए हैं? तो उसने जवाब दिया कि ये मेरे वालिदैन हैं। ठीक है ना, इन्होंने ऐसी अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करी थी कि अजाब आया और अल्लाह ताला ने इनको मस्क मस्क करके ना सुअर बना दिया। अब ये तो इनका अमल था, अल्लाह ताला ने इनके साथ ये मामला किया, लेकिन मेरे तो वालिदैन ही है ना, मेरे तो वालिदैन ही है ना, इस वजह से मैं इनकी खिदमत कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे वालिदैन की खिदमत करने के ऊपर उस बंदे के लिए जन्नत का फैसला फरमा दिया गया। ठीक है, तो अब हमारे वालिदैन अगर करते भी हैं कुछ इस किस्म का गुनाह कर देते हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे या फलाना कोई काम नहीं कर रहे, तो भाई वो उनका फेल है, लेकिन है तो हमारे वालिदैन ही ना, जैसे भी हैं हमने तो करनी है ना खिदमत। ठीक है, तो बस यही है लुबे लुबाब हर हर चीज का कि भाई अल्लाह की खातिर करनी है, ये कोई थोड़ी कि बंदे का अमल देख करके उसके साथ अच्छा मामला करना है। ठीक है, अल्लाह की रजा के लिए जिसको अल्लाह ताला ने जैसा करने का हुक्म दिया वैसा उसके साथ करना है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक अगली क्लास में इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं, बाप बेटे का आईना होता है। तो अभी क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो गया, अगर किसी को कोई सवाल या कॉमेंट हो तो वो पूछ लें या कर ले सवाल। ठीक है चलें, फिर यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मामले के अंदर ना हमें मिसाली बनने की तौफीक अता फरमाए। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का हाल बुरा है, कल को जो है वो फलस्तीन का हाल अभी खत्म नहीं हुआ था कि इंडिया के अंदर जो है वो अहवाल शुरू हो गए फिर से। ठीक है, तो भाई हम अपना काम करें, अल्लाह को राजी करें, तो ये जो काफिर और ये जो मुशरिक और ये जो हिंदू और ये जो यहूदी जो कुछ भी है ना, ये अल्लाह ताला के बंदे हैं और अल्लाह ताला ना हमें इनके आगे रुसवाई से बचाएंगे। अभी क्या हाल है कि उधर भी रुसवाई इधर भी रुसवाई और मुसलमान कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पा। ठीक है ना, वजह क्या है, अल्लाह ताला का ये कहर है, हमें अल्लाह हमने अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नाराज किया, बहुत ज्यादा नाराज किया। ठीक है, क्या फरमाते हैं, अगर काफिर माँ बाप बेटे को काफिर बना सकते हैं तो क्या उनसे बचना चाहिए, क्या उनसे बचना चाहिए, क्या मतलब बचना चाहिए, खुद जो है वो मुसलमान बनना चाहिए और नेक लोगों के साथ जुड़ना चाहिए और वालदेन की खिदमत करनी चाहिए। अब मुसलमान काफिर माँ बाप जो है वो मुसलमान यानी काफिर बना सकते हैं तो माँ बाप को छोड़ करके अब आप कहीं और चले जाएंगे, नहीं ये तरीका नहीं है। खिदमत तो बहरहाल उनकी करनी है और जो है वो अपना अपनी नस्बत मजबूत करें अल्लाह वालों के साथ। सहाबा कराम के साथ जो मामला होता था, तो वो जब वालदेन ऐसे होते थे ना कि जो कि उनको मारा पीटा करते थे दीन से हटाने के लिए, ठीक है, तो सहाबा कराम कई सहाबा कराम के वाकयात मौजूद हैं कि जो अपने वालदैन को छोड़ करके नबी अलैहिस्सलाम के पास आ जाते थे, ठीक है। तो वो उस तरह की सिचुएशन के अंदर छोड़ने की तो बात बनती है कि वो यानी बहुत ही सख्त किस्म का जुल्म और इस किस्म की चीज़, लेकिन खाली जो है ना वो इंटेलेक्चुअली जो है वो काफिर बना सकते हैं। तो भाई आप इंटेलेक्चुअली अपने आप को मजबूत करें ना, दीन का इल्म हासिल करें, अल्लाह वालों से जुड़ें, तो कोई इंटेलेक्चुअली तो नहीं आपको काफिर बना सकता ना। तो बस काफिर माँ बाप के साथ दिली मोहब्बत रख सकते हैं, नहीं काफिर माँ बाप के साथ दिली मोहब्बत नहीं रख सकते, ठीक है ना। उनके साथ जो है ना वो शफकत का मामला और तर्ज का मामला और खिदमत का मामला, दिली मोहब्बत काफिर माँ बाप के साथ भी नहीं रख सकते, ठीक है। दिल तो अल्लाह के लिए, बस खत्म बात, दिल तो अल्लाह के लिए, ठीक है। अब कह तो दिया है लेकिन इस जवाब को समझना जरा मुश्किल काम है, ठीक है। तो इस वजह से बाद में कभी बात करेंगे। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।